रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। ज्ञान का और भक्ति का निष्पक्ष तुलनात्मक विवेचन जो हमारे काकभूषुण जी ने किया, ऐसा और जगह शास्त्रों में एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। सार क्या निकला है कि भगवान की भक्ति बड़ी सुगमता से सारा काम बना सकती है, बना देती है। ज्ञान और भक्ति दोनों से कल्याण होता है, परंतु भक्ति का जो कल्याण होता है बड़ा सुगम होता है, बड़ा सरस होता है। गरुड़ जी महाराज को ये सब बातें सुनाए तो भुसुंड जी महाराज कहने लगे कि देखो, आप जैसे श्रोता हमको मिल गए, आपके पास बैठ करके हमने इतनी बातचीत की, ये संत समागम भगवान ने मुझे दिया, कैसे भगवान हमारे पर कृपा करते हैं। देखो, काकभूषण जी बोलने वाले हैं, गरुड़ जी सुनने वाले हैं। इतना होते हुए भी काकभूषण जी ने सुनने वाले को संत बताया है कि सुनने वाले न हो तो सुनाने वाले का सत्संग हो ही नहीं सकता। तो इसमें भगवान का चरित्र है, गरुड़ जी हमने सुनाया, भगवान का चरित्र तो ऐसा है कि उसमें डूबते चले जाओ, इसका कोई अंत तो है ही नहीं। ऐसे बोलते 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 काकभूषण जी भगवान के महान कृपा भाव में डूब गए। काकभूषण जी इतने डूब गए कि उनकी वाणी एकदम रुक गई, गदगद हो गए। बहुत देर के बाद वापिस वे अपने होश में आए। होश में आकर के काकभूषण जी गरुड़ जी से कहने लगे, गरुड़ जी, क्या कोई भगवान की महिमा गा सकता है? वेद शास्त्र तो उसको नेति नेति बोलते, नेति नेति माने न इति, कि इतनी महिमा है क्या? कि ना भाई, इतनी नहीं, और ज्यादा है। महिमा खूब लिखते लिखते भी कहते हैं कि इतनी महिमा नहीं है। छोटा बच्चा पूछता है माँ से कि माँ, ये आकाश इतना ही है क्या जितना? नहीं बेटा, ये तो अपनी आंख से दिखता है, आकाश का कोई था नहीं, खूब दूर चले जाओ। तो माँ, वो जो वहां आकाश और जमीन मिली हुई दिखती है, वहां जाकर हम देखेंगे तो और आकाश है क्या? कि अरे, कितना ही दूर चला जाओ, ये आकाश कभी समाप्त थोड़े होता है। ऐसे भगवान की महिमा कभी पूरी कही नहीं जा सकती, इतना भगवान का प्रभाव है। जिन भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, जो भगवान के चरण शंकर के द्वारा पूजनीय है, उन भगवान की परम कृपालुता देखो, वो मेरे जैसे अधम प्राणी पर कैसी कृपा किए हैं। सुनो गरुड़ जी महाराज, इस संसार में यदि कोई दया की भीख मांगना चाहे, कृपा की भीख मांगना चाहे, तो भगवान जैसे कोई कृपा को देने वाला दूसरा मिलेगा ही नहीं। भगवान जैसा कोमल स्वभाव न देखने में मिलता न सुनने में मिलता। भगवान के समान की क्या बात को, उनकी थोड़ी सी भी कृपा की बराबरी सारा संसार मिलकर के नहीं कर सकता। और बहुत गहरी बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गरुड़ जी महाराज को सुनाते हुए कागभूषण जी कहते हैं, मेरे भगवान की महिमा सुनिए। देखो, कभी भी भगवान का चरित्र सुनो, भगवान की महिमा गाओ, भगवान का नाम लेओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान की बात कहो सुनो, तो ऐसा गौरव नहीं, मेरे भगवान है ये मेरे भगवान की बात हो रही है। जैसे कोई आपके पिता की प्रशंसा करता हो, आपके दादाजी की प्रशंसा करता हो, आपके माता पिता की प्रशंसा करो, कितना अच्छा लगता है सुनने वाले को, हो ये मेरे पिताजी की महिमा गा रहे हैं। ऐसे मेरे स्वामी को देखो, मेरा स्वामी कैसा है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरैन बिनु से ए मम स्वामी। बड़े बड़े साधक लोग कितनी बड़ी साधना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये अंतिम उपदेश है, काल में सुनिएगा। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े वैराग्यवान, जीवन मुक्त, बड़े क्रांत दृष्टा, बड़े शास्त्रकार, जानने वाले, बुद्धिमान, तत्वज्ञ, सन्यासी, योगी, तपसी, ज्ञानी, धार्मिक पुरुष, पंडित, विज्ञानी, कितने ही हो गए, पर वो मेरे भगवान के बिना कोई तर नहीं पाया है। इन सबको मेरे भगवान ने तारा है, ये मेरे भगवान ने। इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, राम नमामि नमामि नमामि, तीन बार का राम नमामि नमामि नमामि। तीन बार नाम क्यों कहा, नमामि नमामि क्यों कहा, कि जिस बात को तीन बार कह दिया जाता है वो बात एकदम पक्की सत्य होती है। शास्त्रों में आता है, पहले कोई व्यक्ति किसी बात को ऋषि महात्मा गए, तुमने ये अन्याय किया है, तुम नरकों में जाओगे, नरकों में जाओगे, नरकों में जाओगे, ये जो तीन बार बोल देते तो डर जाए, रही अब तो नरकों में जाना ही पड़ेगा, बात तो सत्य होगी। इसलिए क्या करते, कोई ऋषि बोलता एक बार बोलते ही दूसरे लगाओ, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, देखो अब चुप हो जाइए, इस प्राणी को बिचारे को नरक का, अच्छा अच्छा ठीक है। अथवा कोई आशीर्वाद देते तो तीन बार बोलते, जाओ तुम सदा सुखी रहो, बहुत सुखी रहो, खूब सुखी रहो, तीन बार बोलते, तीन बार देने वो बात सत्य होती है। तरैन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। मैं तो एक ही बात जानता हूं, मेरे जैसे न जाने कितने कितने पाप राशि वालों ने भगवान की शरण ली होगी, और भगवान ने उनको शरण में आते ही कल्याण कर दिया, उनका पाप देखा तक नहीं। ऐसे है मेरे भगवान दयालु, मेरे भगवान। देखो, भगवान का नाम ले हो तो बस मेरे भगवान है, ध्यान करो तो मेरे भगवान का ध्यान कर रहा हूं, कथा सुनो तो मेरे भगवान की कथा है। जिनका नाम संसार के आवागमन की बीमारी को मिटाने का सबसे बड़ा औषध है, और तीन प्रकार के पाप को जो दूर करने वाला है, वही भगवान मेरे पर सदा ही कृपा करते रहे और सदा सदा ही मुझे संतों का समागम मिलता रहे और उनका चरित्र कहता सुनता रहूं, यही मेरे पर अनुकूलता बनी रहे। काकभूषण जी के ये वचन सुनकर के और उनके आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देख करके, उनका गला बोलते बोलते भर आया देख करके, गरुड़ जी महाराज बड़े प्रेम से अपनी बात कहने लगे। उनके सारे संदेह तो दूर ही हो गए। बड़ी नम्रता से कहने लगे, हे काकभूषण जी महाराज, भक्ति रस से डूबी हुई आपके द्वारा सुनी हुई ये राम कथा मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। मैं तो सुनकर के कृतकृत्य हो गया। इतना ही नहीं, मेरे अंदर नया नया भगवान का प्रेम बढ़ा। नया नया प्रेम हो, ये नया नया प्रेम है ना, ये ज्ञान में नहीं होता, ये भक्ति में होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिन दिन में ये प्रेम नया नया होता चला जाए। राम चरण नूतन रति भई, राम जी के चरणों में नया नया प्रेम हो गया। माया जनित विपत्ति सब गए और माया से पैदा होने वाली सारी मेरी विपत्ति सब दूर हो गई। मैं तो अब दुनिया को ये कहना चाहता हूं कि हे काकभूषण जी महाराज, मैंने भगवान का खूब दर्शन किया है, भगवान के साथ लीलाओं में रहा हूं, लेकिन जब तक अंतर नेत्र नहीं खुलते हैं तब तक भगवान के रहस्य का ज्ञान नहीं होता है। भगवान के संग से भी बढ़कर संत का संग करना चाहिए। भगवान के संग से भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं होता और सत्संग करने से भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। तो भगवत संग से बढ़कर भगवान के भक्तों का संग होता है। अब बताओ, मैं तो मोह रूपी सागर में डूब रहा था, आपने कृपा करके मुझे बचा लिया, नौका बन गए आप। मैं आपका कोई उपकार उतार नहीं सकता हूं, कह भी नहीं सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, आप जैसे सत्पुरुषों के चरणों में प्रणाम कर सकता हूं और मेरे पास इस उपकार के बदले कोई उपकार करने का साधन भी तो नहीं है। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। एक तो संत होते हैं वो सदा दूसरे के लिए ही होते हैं। वृक्ष होता है सदा दूसरे के लिए होता है। देखो, वृक्ष की छाया ना वृक्ष के काम नहीं आती, वृक्ष के पत्ते वृक्ष के काम नहीं आते, वृक्ष के फल वृक्ष के काम नहीं आते। ऐसे ही संत पुरुष भी होते हैं, वो दुनिया के काम आते हैं। संत अपने लिए दुनिया का उपयोग नहीं करता। नदी है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, पर्वत वो अपनी गुफाओं में खुद नहीं रहता है। पर्वतों के अंदर भी कोई कोई ऐसी ऐसी खनिज खाने होती है, वो भी पर्वत के काम नहीं आती है। ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी सबको अपना आधार देती है। ये दूसरे के हित के लिए सब कुछ सहन करने वाले होते हैं। परंतु इन सब में भी देखा जाए तो संत तो संत ही है, इसका स्थान तो बहुत ही ऊंचा है। कई कई लोगों ने कहा है कि संत होता है वो मक्खन के समान है, संत का हृदय मक्खन के समान है। पर ही काकभूषण जी महाराज, कवियों ने कह तो दिया पर उनको कहना आया नहीं। क्यों नहीं आया महाराज? मक्खन कितना मुलायम होता है, बहुत चिकना होता है। ऐसे संत मुलायम होते हैं, चिकने होते हैं। अरे इतना ही मत देखो। संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि न पर कहे न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता। ये मक्खन को आप जो है गरम करो तो उसमें चिड़चिड़ चिड़चिड़ होगा वो, तो क्या होगा कि वो चिड़चिड़ क्यों होगा कि देखो वो मक्खन है वो खुद गरम होता है चिड़चिड़ हो जाता है, उसमें छाछ बोलती है पानी बोलता है ऐसा हमने सुना है भाई, हमारा तो काम पड़ा नहीं, खाने का तो काम पड़ जाता है पर मक्खन को कभी तपाने का काम पड़ा नहीं, सुना है वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है। तो अपने परिताप से मक्खन है वो ना जो है द्रवित होता है, पर संत होते हैं वो दूसरे को दुखी देख करके और जो है चिड़चिड़ हो जाते हैं। चिड़चिड़ होना का मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं, माने वो द्रवित हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं रोने लग जाते हैं। एक संत थे उनके माथे में कीड़े पड़ गए, घुमड़ी हो गई कीड़े पड़ गए, तो दूसरे साधु ने जाकर थोड़ी सेवा, अरे नहीं अरे ये क्यों महाराज, अरे नहीं कीड़े मर जाएंगे देखो। कहा कि महाराज गरम पानी है उसमें नीम को खूब अच्छी तरह से गरम करके नीम का सार इसमें आ गया सब कीड़े, ना 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 मेरे कीड़ों को मारना नहीं पड़े रह लो कीड़े। और इतना बड़ा घाव हुआ हुआ उनके लेकिन कीड़े खा रहे हैं किलबिला रहे हैं पड़े रोने लग गए। वो संत रोने लगे कि बेचारे ये कीड़े गर्म पानी से नमक से सॉरी नीम से ये सब जल जाएंगे मर जाएंगे, वो रोने लग गए उसे। तो भाई दूसरे के दुख से दुखी होने वाले संत महापुरुष मक्खन के समान कैसे हुए, हम इनको किनके समान कहें कोई कह नहीं सकते संत महात्माओं को। बहुत अच्छा हुआ इतने दिन तक आपके पास बैठकर सत्संग किया, आपकी कृपा से मेरा भगवान को देख लीला देखकर जो संदेह पैदा हुआ था ना कि देखो भगवान के यहाँ सर्प बंध गए मैंने जाकर सर्प का बंधन खोल दिया, ऐसा जो मेरे अंदर अभिमान हुआ भगवान की लीला में संदेह हुआ वो सारा संदेह मेरा आज दूर हो गया। हे गरुड़ महाराज हे काकभूषण जी महाराज मैं सदा ही आपका दास रहूंगा, जाने उस सदा मोहिनी जग किंकर आप मुझे अपना सेवक जानिए। बार बार ऐसा कहा। और अब ध्यान से सुनिए कि गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े प्रेम से श्रद्धा से उनसे आज्ञा लेकर सीधे कहाँ गए, गयउ गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर, भगवान को हृदय में रखकर वैकुंठ में गए। काकभूषण जी वैकुंठ से नहीं आए थे जो वैकुंठ में गए। इसका अर्थ क्या हुआ, वैकुंठ में जाने का अर्थ ये हुआ कि ये अपने लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग देखो काकभूषण जी नहीं गए वैकुंठ में, गरुड़ जी गए। जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आत्मीयता पूर्वक भगवान को अपना मान करके जो श्रद्धा से कथा सुनता है वो निश्चित वैकुंठ को जाता है। गरुड़ जी महाराज सीधे वैकुंठ में गए, अनुमान लगाइए अब जाकर के उन्होंने भगवान के दर्शन किए होंगे तो क्या क्या भाव पैदा हुआ होगा। दर्शन तो पहले भी करते थे पर पहले इतना सत्संग का भाव नहीं था उनके मन में, इतनी प्रेम की बात पैदा नहीं हुई। आज इन्होंने जो सत्संग किया उस सत्संग के प्रभाव से जब भगवान के दर्शन किए होंगे तो उस दर्शन से उनको कितना आनंद मिला होगा। भगवान के पास भी जाकर यही कहा होगा कि महाराज आपका रूप तो वही है जो पहले मैं देखता था लेकिन मेरी दृष्टि ऐसी सत्संग से बदल गई कि आपके एक एक अंग में मुझे दिव्यता मालूम देती है, नयनों में आपकी सुंदरता कुछ और ही होती है। एक बार महाराज जी कुरुक्षेत्र पधारे थे, वहां सत्संग हुआ। सूर्य ग्रहण में प्राय बहुत लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं, तो एक पंडित जी भी गए हुए थे महाराज जी के साथ ही। तो वो पंडित जी गए तो फिर वहां महाराज जी ने सत्संग में बताया कि देखो इतने लोग आए हैं, कितने श्रद्धालु पुरुष, इनकी कितनी बड़ी श्रद्धा। तो बाद में वो पंडित जी कहने लगे कि महाराज सत्संग में आने पर मेरी दृष्टि बदल गई, नहीं तो मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में आया, इधर उधर घूमा तो मुझे इतना बुरा लगे, कैसे आदमी है, चाहे जहीं थूक देते हैं, चाहे जहीं लघु शंका कर देते हैं, चाहे जहीं गंदगी कर देते हैं, कभी मेरे श्रद्धा ही नहीं उन लोगों को देख करके, कैसे हैं, कैसे नहा लेते हैं, कैसे कहाँ हैं, कितनी गंदगी करते हैं। आपने जब ये बताया कि नहीं नहीं इनके श्रद्धा भाव को देखिए, तो मेरी दृष्टि ऐसी बदली, वो कुरुक्षेत्र के तालाब में चारों तरफ लोग स्नान कर रहे, अरे कितनी श्रद्धा है, कितना कितनी श्रेष्ठता है इनमें, कितनी पवित्रता है, कितनी दूर से आए हैं, कितना कष्ट सहन किया है, कोई काय से आए, पास वाले लोग तो अपने गांव के साधनों से आए होंगे बेचारे, कोई बैलगाड़ियों पर, कोई ऊंट गाड़ियों पर, कोई कैसे आए, दूर दूर के भी लोग आए तो वो भी कितना कष्ट, घर छोड़ना कोई कष्ट ही तो है, ऐसे करते करते बेचारे ये लोग आए हैं, ओहो कितने पवित्र है, मेरी दृष्टि बदल गई। सत्संग से सज्जनों संसार वही रहता है, पर अंदर में एक दृष्टि और हो जाती है, देखने का तरीका बदल जाता है, मकान वही है पर उसको देखने का तरीका बदल जाता है, परिवार के लोग भी वही हैं पर उनका तरीका देखने का समझने का तरीका बदल जाता है। ये सब बात बताने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने संक्षेप में कह दिया कि तासु चरण सिरनाय करी प्रेम सहित मति धीर गयउ गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। देखो पार्वती, संत समागम के समान संसार में कोई लाभ हो सकता है क्या? कोई कहते हैं हमको लाभ हुआ, उसको बहुत लाभ हुआ, ऐसा व्यापार में लाभ हो गया, उसको कोई डिग्री का लाभ हो गया, किसी को क्या हो गया, इसको डिग्री मिल गई साहब, एमए की डिग्री मिल गई, आचार्य की डिग्री मिल गई। हमारे भगवान शंकर कहते हैं कि देखो पार्वती, संत समागम के समान कोई संसार में लाभ है क्या? नहीं है महाराज। ये मैं नहीं कहता हूं पार्वती, गावई वेद पुराण, वेदों में पुराणों में सत्संग की बहुत महिमा गाई है। तो महाराज सत्संग मिलता कैसे है? भाग्य से मिलता है क्या? कि भाग्य से कैसे मिलेगा? देखो सत्संग भाग्य से कैसे मिलेगा ये बताओ, क्यों? उत्तम कर्म किए, उत्तम पुण्य का काम किया तो सत्संग मिल गया कि नहीं? उत्तम काम करने के लिए भी तो सत्संग चाहिए। ये काम उत्तम है और ये काम उत्तम नहीं है, तो जो अनुत्तम काम है उसका त्याग करना और उत्तम काम को करना, ये बात कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलती है। तो सत्संग पुण्य का फल नहीं है, सत्संग क्या है? बिनु हरि कृपा न हो सो, भगवान की कृपा से मिलता है। सत्संग मिलता है, भगवान की अतिशय कृपा होती है, कितने दयालु भगवान, हमारे सब पापों को भगवान दरकिनार करते, एक तरफ करके प्राणी को सत्संग देते हैं, सत्संग करो भाई। तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहिं वेद पुराण। इसलिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। देखो पार्वती, सती रूप में तुम मेरे पास थी और मेरे पास रहने पर भी तुमको सती रूप में जो है मोह हो गया। राम जी का चरित्र देखकर तुमको मोह हो गया था। आज है क्या? नहीं है महाराज। क्यों? ये रामचरित्र सुना, सत्संग किया, इसलिए नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि देखो पार्वती, भगवान का जो चरित्र सुनना, सत्संग करना, ये भवसागर से धक्का लगाने के समान। कोई आदमी डूबने वाला हो, तैरना जानता नहीं, तैरना जानता नहीं, कोई तैराक आदमी उस आदमी को धक्का लगा है, धक्का लगाते 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 वो किनारे पहुंच जाता है, वो डूबने से बच गया। ऐसे ही सत्संग और भगवत कथा ये क्या है, आदमी को धक्का लगाते हैं, माने दूसरों की शक्ति से जो पार होता है। डूबने वाला व्यक्ति तो जानता नहीं दूसरा तैराक है, और वो तैराक उसको पकड़ लेगा तो वो तैराक को पकड़ लेगा, तो तैराक और डूब जाएगा। तैराक कभी भी डूबने वाले को अपने ज्यादा अपने ऊपर आने नहीं दो, सीधा धक्का ही लगाता है उसके, धक्का लगाता है, लगाते लगाते वो किनारे पड़ जाता है। एक तैराक को देखा, उसने यूं धक्का लगाया तो किनारे पर आया तो उस व्यक्ति का सिर फूट गया। तो नहीं सिर फोड़ दिया, तो नहीं नहीं सिर फोड़ दिया तो कोई बात नहीं, जान बच गई भाई, सिर फूट गया, टांके लग जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, पर मरी जाते ना हम। तो ऐसे ही ये जो धक्का लगता है भगवान के चरित्र को सुनने का, सत्संग का धक्का लगता है, उससे हम लोग डूबने वाले बच जाते हैं। तो देखो पार्वती, ये बड़ा पवित्र इतिहास, बड़ा सुंदर भगवान का चरित्र हमने तुमको सुना। सुनत श्रवण छूटे ही भव पासा, संसार का जो पाश है, पाश माने फंदा। फंदा कैसा होता है? देखो फंदा होता है ना, फंदा यूं नहीं है, ये ऐसे करके यूं कर दिया, ये अब यूं करेंगे ना, ये फंदा तो खुल जाएगा, ये फंदा नहीं है, फंदा है ये यूं, इधर खींचो और इधर, ये देखो जो जो खींचेंगे गांठ गांठ होती चली जाएगी, खींचते गए गांठ गांठ होगी, और वो होती है एक तरफ की गांठ। ये गांठ गांठ नहीं का, ये पास का, इसको पास बोलते हैं, फंदा। तो श्रवण सुनत श्रवण छूटे भव पासा, और जो भगवान के शरणागत होता है उसके लिए तो ये रामचरित्र कल्प वृक्ष के समान है। बड़े भगवान के शरण हो जाए उसके लिए कल्प वृक्ष के समान है। भगवान का एक बार प्रेम पूर्वक चरित्र सुन लो, उसका भगवान राम के चरणों में प्रेम हो ही जाएगा। कितने कितने जन्मों से जीव यहां भटकते भटकते आ रहा है, कितने इसने मन से पाप किए होंगे, क्रियाओं से पाप किया होगा, वाणी से पाप किया होगा, पाप का ढेर लिए लिए चल रहा है, इतना वजन लिए चल रहा है। एक भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुन ले, सत्संग कर ले, ये सारी पाप राशि तत्काल समाप्त हो जाती है। ओहो, देखो पार्वती, कल्याण करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया। तीर्थों में जाओ, तीर्थाटन, साधन समुदाय, कई प्रकार के साधन किए, योग किया, वैराग्य किया, ज्ञान निपुणाई, ज्ञान में भी बड़े निपुण रहे, बड़ा शास्त्र का ज्ञान, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, नाना प्रकार के कर्म किए, नाना प्रकार का धर्म किया, नाना प्रकार के व्रत किए, उपवास किए, नाना प्रकार के दान पुण्य किए, संयम किया, जप किया, तप किया, यज्ञ किया, और भूतों पर दया की, खूब विद्या प्राप्त की, विवेक बढ़ाई, जहन लगी साधन वेद बखाने, जितना वेदों ने साधन बताया वो सब कुछ किया। परंतु हम कहते हैं इन साधनों के फल में सबसे बड़ी क्या बात है, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भगवान की जो भक्ति होती है वो यदि होती है तो सब ठीक है। भगवान की भक्ति के बिना ये साधन काम के नहीं आते। भगवान की भक्ति होती है वो भगवान की कृपा मांगने से भगवान की भक्ति यूं ही मिल जाती है। भगवान से यही मांगे कि हे भगवान आपके चरणों में प्रेम देओ, आपकी भक्ति देओ, ऐसे मांगता है उसको भगवान ये नहीं देखते कि ये भक्ति मांग तो रहा है लेकिन मांगने का अधिकारी है क्या, बस यहां मांगना ही साधन है। अपने लोग तो कोई आदमी करोड़पति लखपति आदमी करोड़पति आदमी वो कहे साहब हमको धन दो यार, कैसे आदमी, शर्म आनी चाहिए आपको, आप तो इतने पैसे वाले हो, आप कहां सहायता मांगते हो, आप तो दूसरों की सहायता करने वाले हो, आप सदावर्त में कैसे आकर के भोजन करते हो, डांट देंगे। परंतु भगवान कह रहे मेरे यहां तो कृपा मांगता है ना, बस यही अधिकारी था, मांग लिया मेरे से। कितना ही वो बड़ा साधन करने वाला, भजन करने वाला, वैराग्य करने वाला, योग तप करने वाला, या कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, केवल भगवान से कृपा मांगता है, कृपा मांगता है। तो कृपा मांगने मात्र से भगवान उसको अपनी दुर्लभ भक्ति दे देते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। ये भगवान की भक्ति जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को महात्माओं को भी नहीं मिलती, ये बिना प्रयास जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है आनंद से प्राप्त कर सकता है। ऐसे भगवान शंकर जी ने ये बात बताई। कल अपने रामचरितमानस का ये उत्तर कांड का पूर्णार्थी का प्रसंग है। अब पार्वती जी का इनका कैसे संवाद पूरा होता है, तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का संवाद, काकभूषण जी का इनका तो पूरा हो गया। देखो पूरा हो गया उसके बाद गरुड़ जी महाराज तो चले गए, लेकिन काकभूषण जी हैं वो उसी आश्रम में रहते, ये लिखा नहीं कि वही है, ऐसा लिखा नहीं है, क्यों अब लिखने की क्या जरूरत है। ऐसे ही भाई तुलसीदास जी महाराज जिस ढंग से इसको पूर्ण करेंगे ना, बहुत बुद्धिमानी से कहेंगे। देखो हमारी माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था कि आप हमको वो भी कथा सुनाना कि जैसे भगवान सब कुछ छोड़ करके, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके साकेत धाम पधारे थे, सबको साथ में लेकर, वो बताना। ये कथा वाल्मीकि रामायण में भी आती है, ये कथा जो है अध्यात्म रामायण में आती है, सब रामायण में कथा आती है, और भी रामायणों में आती है, पर तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा, दो चौपाई और लगा देते। ऐसे भगवान ने इतने वर्ष तक शासन किया, उसके बाद भगवान सबको लेकर के चले गए। अध्यात्म रामायण में विस्तार से आता है, वाल्मीकि रामायण में तो और ही ज्यादा विस्तार से आता है। शत्रुघ्न को बुला लिया मथुरा से, आ जाओ तुम आ जाओ, हनुमान जी आदि सब थे ही, सुग्रीव को बुला लिया, रोरों को बुला लिया, विभीषण को कहा तुम तो अभी यहीं रहना, सुग्रीव को बुला लिया, बंदरों को बुला लिया भगवान ने, बहुतों को बुला लिया, बहुत लोग आए भगवान, कह करके बुला लिया बुलाओ आ जाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज मेरे ना ना ना, तुम्हारा क्या विचार है, चलोगे ना, हम नहीं जाएंगे महाराज। क्यों नहीं महाराज, आपसे बढ़कर आपका नाम है, आपका कीर्तन है, तो तुम यहां कथावाचक बनोगे क्या, नहीं महाराज, तो जहां भगवान की कथा होगी वहां चुपचाप जाकर हम कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, जहां राम जी कथा होती है वहां हम कथा सुनेंगे। इसलिए देखो राम कथा में हनुमान जी का स्थान होता है, भागवत की कथा होती है उसमें उद्धव जी का स्थान होता है। उद्धव जी है वो भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। उद्धव जी को भगवान ने ये नहीं कहा जाओ बैकुंठ में जाओ, कहा अलकनंदा चले जाओ। भगवान से कहा महाराज कभी मेरे इधर आने की इच्छा हो आपकी कथा जहां जहां मेरी कथा वहां पहुंच जाना। तो भागवत होती है वहां उद्धव जी का आसन गुप्त रूप से रहता है। अपन देख देते भाई जगह खाली पड़ी है, रामधार हम किता जना सुना है कहीं गुण थोड़ा सा मुट्ठी भर लोग है, माया माया तो है बाकी तो बड़ो ये स्टेज बढ़ा दी और सब कहीं थोड़ा सा लोग। अरे नहीं इसमें माई नहीं रहे, इतने श्रोता बैठे हुए, इतने श्रोता है कि जगह थोड़ी पड़ती है। इकट है यूं फालतू बेका हो माने झूठ क्यों बोलो थे भाई, झूठ की बात नहीं है। जहां कथा होती जहां भी वहां कथा सुनने के लिए पुण्य लोक से दूसरे लोक से बैकुंठ आदि लोक से महापुरुष आज्ञा लेकर गुप्त रूप में आते हैं, गुप्त रूप में दिव्य शरीर में। क्या पता है अभी इसका, ये तो यूं अच्छा है। यदि ऐसा हो तो कथा सुनते हैं तो सबको अच्छा लगता है ना, कहने वाले को सुनने वाले को शांति मिलती है, आनंदानुभूति होती है। ये आनंद का प्रसाद किसने दिया सज्जनों, आप भी वही और हम भी वही। ये वक्ता और श्रोता दिखते तो दो ही है पर यहाँ सबको आनंद का प्रसाद मुट्ठी भर भर करके धोबा भर भर के जो प्रसाद दिया जाता है, कौन दे रहा है? ये भी महापुरुष आते हैं अव्यक्त रूप से आकर अव्यक्त ही प्रसाद देते हैं। इसलिए देखो सत्संग में आने वाला कोई आदमी ये नहीं कहता कि हमारा समय खराब हो गया, कहने वाला कि सुनने वाला बड़ा बहुत अच्छा समय गया। कहा ये चातुर्मास कैसे बीत गया, अच्छे काम में समय लगता है तो समय छोटा हो जाता है और अशांति में जो समय जाता है वो समय बहुत कटता नहीं है। जेल खाने में कोई अहदा हो रही है, 2 महीना हो गया माना थे जेल खाने में बैठे हैं, 2 महीना हो गया कि तो लंबो टाइम है, 60 दिन हो गया। रावण कह चौमासो कद आयो और कद गयो, कहीं ठाई नहीं पड़ी। क्या ठाई लिए को नहीं पड़ी माता जी, क्या आप अच्छे काम में समय लगाया हो इसलिए इस चीज को ठा नहीं पड़े। तो गोस्वामी जी महाराज ने भगवान का साकेतवास का प्रसंग क्यों नहीं कहा कि गोस्वामी जी महाराज की इच्छा है कि भगवान साकेतवास में चले गए तो पढ़ने वाले सुनने वाले ये न समझ ले कि भगवान तो मेरे हृदय में तो है नहीं, साकेत चले गए। गोस्वामी जी महाराज ये जब बताना चाहते हैं कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है, भगवान के साथ में हमारा सानिध्य गोस्वामी जी महाराज रख रहे हैं। समय समय की बात है भाई, गोस्वामी जी महाराज के समय तक कितना, वाल्मीकि जी महाराज से गोस्वामी जी तक के बीच में कितना समय निकल गया, कितनी श्रद्धाएं बदल गई, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई, अवधारणाएं बदल गई, श्रद्धाएं बदल गई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने समय के अनुसार जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। इसलिए सब प्रसंग नहीं कहा जिस प्रसंग का कोई अपनी साधना से मतलब नहीं था। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिनहि प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। एक तो इसमें विश्वास होना चाहिए और जो है ये निरंतर कथा सुने, निरंतर कथा के अंदर ही व्यक्ति डूबा रहे, और नहीं तो अपने अंदर ही कथा खुद ही कहे और खुद ही सुने, अपने अंदर ही कथा कहे सुने आनंद का अनुभव होगा। राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम
राम राम राम सीताराम राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री राम 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 सीता राम
राम श्री राम 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 सीता राम
सियावर रामचंद्र।